Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sagun ki upasana karoge? तो उपासक उपास्य में भी रहेगी माया, उपासक में दोनों जगह रह गई तो माया से तारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। निर्गुण की उपासना करोगे तो उपास्य में तो माया नहीं रहेगी, लेकिन उपासक में माया है, क्योंकि उपासना भेदमूलक होता है, भेद माया का कार्य है। ले जी, उपासना भेदमूलक होता है, द्वैतमूलक होता है, द्वैत माया का कार्य है। तो फिर तुम माया से कैसे बच सकते हो? फिर क्या करना चाहिए माया से बचने के लिए? तो निर्गुण के उपासना से भी बच नहीं सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? शंकराचार्य जी कहते हैं, उपासना की बात छोड़ दो, शरण की बात भी छोड़ दो, फिर क्या करें? बोले अनुसंधान करो। ये प्रपद्य का अर्थ किया शंकरानंद स्वामी जी ने, प्रपद्यते यानी अनुसंधत्ते। निर्गुण का, अपना और माया का, तीनों का अनुसंधान करो कि तीनों में कौन सा सत्य है, कौन सा झूठा है। ये अनुसंधान करोगे, चिंतन करोगे, जो कि विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। तो वह स्वरूप अनुसंधानात्मिका भक्ति, परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान और माया के स्वरूप का अनुसंधान करोगे तब तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप लक्ष्यार्थ में तो एक है। माया का स्वरूप तो माया तो है ही नहीं। ले जब अनुसंधान करोगे तो माया सिद्ध ही नहीं होगी। है दिख रहा है आकाश में नीलिमा, लेकिन उस नीले रंग का यदि अनुसंधान करके खोजने जाओ, आकाश में नीलिमा है ही नहीं। इसी तरह माया दिख रही है, कब तक दिखेगी? अनुसंधान नहीं करोगे तब तक माया है ये बुद्धि होगी, अनुसंधान नहीं करोगे तब तक आकाश नीला है ये बुद्धि होगी, अनुसंधान करोगे तब क्या होगा? आकाश नीला कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश निर्गुण है तो नीला है ही नहीं। इसी तरह माया है ही नहीं, जो स्वरूप से नहीं है फिर भी भासे, उसी का नाम तो माया। स्वरूप से नहीं, स्वयं में कुछ नहीं और फिर भी भासित होवे, दूसरे के आश्रय में रहकर भासित होवे, परसत्ता का भासमानत्वम मायात्वम। ये परमात्मा की सत्ता में बिना हुए ही भासमान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? माया। स्वसत्ता भासमानकम, अपने ही सत्ता में जो भासित होए उसका नाम क्या है? परमात्मा। परमात्मा को किसी अन्य की सत्ता की आवश्यकता नहीं है, अपने ही सत्ता में सत्तावान हुआ हुआ है, इसलिए वह सत्य है, परमात्मा है। पर सत्ता में भासमान है इसलिए माया है, अपनी सत्ता में वो है ही नहीं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता में भाषित हो रही है। और तरना किससे? तुम्हें पर सत्ता में भाषित जो माया है उसी से तरना है, निकलना है, बचना है। और निर्गुण का अनुसंधान करोगे तभी तुम माया से तर सकते हो, अन्यथा न सगुण के आश्रय में रहकर माया से बच सकते हो, न सगुण की उपासना से बच सकते हो, न निर्गुण की उपासना से, क्योंकि भेद बुद्धि यदि है उपासना में तो भेद बुद्धि ही माया का कार्य है। इसका मतलब माया कार्य से ही माया का अस्तित्व सिद्ध होता है, भेद बुद्धि है तो माया है, बस खत्म हो गई बात। तो यहां बड़ा सुंदर ये प्रसंग को वेदांत परक बता दिया, क्योंकि शाश्वत ही तुम उपनिषद रूपी वेद रूपी वृक्ष के उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या के शाखा में रहोगे तो हे द्विजवरा, मन भी द्विज है, समझे नहीं? मन को भी जब यह पैदा हुआ, अस्तित्व में आया, तो संस्कारहीन था मन। मन को भी संस्कार देना पड़ता है, संस्कारित करना पड़ता है। मन को जब आप अच्छे संस्कारों से संस्कारित करोगे तभी वह मन तुम्हारा मित्र हो सकता है। यदि तुम मन को अच्छे संस्कारों से संस्कारित नहीं करोगे तो मन तुम्हारा घातक बन जाएगा। इसलिए अच्छे संस्कारों से संस्कारित मन को यहां द्विज कहा। मन भी द्विज है और पक्षी भी द्विज है और ब्राह्मण आदि वैश्य वो भी क्षत्रिय भी द्विज है, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार इन्हीं को है। आज विवाद नहीं करना, फिर आपने कहा हाँ कोई फिर विवाद करोगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही वेद पढ़ने के अधिकार है, शूद्र को क्यों नहीं अधिकार है? तुम कहोगे कानून ने अधिकार दे दिया, तो कहां पढ़ लिया तुमने? कानून ने तो दिया ना अधिकार, कहां पढ़ रहे हो? फिर भी तुम वैसे के वैसे ही बैठे हो। कानूनी अधिकार दे दिया, झगड़ा किया, कानूनी अधिकार दे दिया और पढ़ने गुरुकुल में तुम आते नहीं हो। तो झगड़ा करने के लिए अधिकार खोजा है तुमने, तो भाई दे दिया ना, पढ़ो वेद। बोले क्या ये वेद पढ़ से क्या फायदा होगा? ले फिर क्यों झगड़ा किया था? तुम अधिकार खोज रहे थे और कानून ने अधिकार दे दिया, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, कानून ने दे दिया, फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? आओ पढ़ने। बोले वेद पढ़ के क्या मिलेगा? बोले फिर झगड़ा क्यों किया था? तो इसका मतलब अधिकार केवल झगड़ा करने का है, पढ़ने का नहीं है, यही निश्चित हुआ। छंदसाखि शिखान वितेर द्विजवरई संशे विते शाश्वती सौख्यापादिनी। हाँ, तुम उपनिषद विद्या का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे तो ये मन वहां तुमको जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा ब्रह्म विद्या से, सौख्यापादिनी, सुख का आपादन तो ब्रह्म विद्या में ही है भाई, परा विद्या में ही है, अपरा विद्या में नहीं है, अन्य विद्या में वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सौख्यापादिनी खेद भेदिनी, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, खेद भेदिनी, अनेक जन्मों में बार बार पैदा होते रहे, मरते रहे, कर्म करते रहे, कर्म फल भोगते रहे, ये क्रम अनादिकाल से चलता आया है और कब तक चलते का कोई ठिकाना नहीं है। तो संसार भोग और संसार के कर्मों से जो जीव थका हुआ है, उस थकान को तुम नाश करना चाहते हो तो वो क्या है? खेद भेदिनी, कितना सुंदर शब्द है। तुम्हारी संसार यात्रा को मिटाने वाली तो वही है। संसार यात्रा करते करते जो थके हो यदि तुम, तो और थके नहीं हो तो दौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसार यात्रा से तुम थके हो तो उस थकान को नाश करने वाली विद्या तो यही उपनिषद विद्या में ही है। हे मन, तो अनादिकाल से विषय भोगते भोगते थक गया है, संसार यात्रा करते करते थक गया है, जन्मते और मरते मरते थक गया है, अब तो जन्मना न पड़े, अब तो मरना न पड़े, अब तो ये विषयों को भोगना न पड़े तो अच्छा था, यदि तू मानता है, हाँ? बार बार बूढ़े होते रहे, मरते रहे, तो अब तो फिर दोबारे कभी भी बूढ़ा न हो, ये इच्छा है कि नहीं तुम्हारे मन में? तो फिर उस खेद को नाश करने की क्षमता इसी में है। खेद भेदिनी, सौख्यापादिनी खेद भेदिनी सुधा सारे फलहीर दीप्यते, सुधा सारेर फलेर दीप्यते, अमृत अमर अमृत, कभी जन्मना न पड़े, कभी मरना न पड़े, ऐसे रसों से भरा हुआ मोक्ष रूपी फल से युक्त है। देख लो कौन से फल से है? मोक्ष रूप है। कैसा वो मोक्ष रूप? सुधा सारे, क्या बढ़िया रस है उसमें है? पान करते समय भी पंडित लोग जब भागवत के मंगलाचरण करते हैं ना, सिर हिला हिला के है, पीवत भागवतम रसाल मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भागवत कैसा फल है? बोले रसालयम पिबतम भागवतम कीदृशम भागवतम रसालयम, गुठली नहीं है रस ही रस है। है कहते हैं कि नहीं, ना छिलका है ना गुठली है और पूरा का पूरा रस से भरा हुआ शास्त्र, भक्ति रस से। लेकिन ये है मन रूपी पक्षी, जिस पेड़ में रहने के लिए मैं तुझे कह रहा हूं, पेड़ में भी विशेष शाखा में टहनी में रहना, वो टहनी की विशेषता यह है कि उसमें इतना बढ़िया फल लगने वाला है जिसमें सुधा सारे फल दीप्यते, सुधा अमृत रूपी फल से वह युक्त है। चेता पक्षी शिखा मणे, ऐसा वृक्ष होता हुआ ऐसी शाखा टहनी होते हुए भी तू इधर उधर भटक रहा है, कैसा मूर्ख है भाई। त्यज वृथा संचार मन्नेरलम, अन्य ही संसार में उसको छोड़कर अन्यों के जो विकल्प है, एक प्रकार से शंकराचार्य जी ये भी कहना चाह रहे हैं, तो कर्म मीमांसा की तरफ दौड़ता है तो दौड़ना नहीं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यज्ञ करो जीवन भर, इंद्राय स्वाहिदम इंद्राय नमः करते रहो, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की सुधा अमृत पान कर तो लोगे, लेकिन पुण्य क्षय के बाद फिर यहां फेंक देंगे। तो ऐसे वृक्षों में नहीं जाना तू, उधर उधर में मत भट करना। सुधा त्यज वृथा संचार मन्नेरलम, अन्य की तरफ तो नहीं भटकना हो, कहीं नहीं जाना, अलम बंद करो इधर उधर भटकना। मन भटकता रहता है, प्रेमपुरी आश्रम में बढ़िया उपनिषद का स्वाध्याय और प्रवचन चलता है, ब्रह्म विद्या है। सुनते सुनते अमेरिका जाने की इच्छा हुई, अरे भाई क्या मिलेगा वहां जाकर, बोलो क्या मिला अमेरिका से जाकर। सुनते सुनते कहां जा रहे हो, तो बोले मुलुक जाना है, और क्या मिला तुमको मुलुक जाकर। वही कौन सा वृक्ष? संसार वृक्ष। और संसार वृक्ष तो टाट के फेंकने का वृक्ष है, तुम उसी को और सिंचन करने जा रहे हो इधर उधर, उससे अभी तक क्या मिला तुमको? पिछले जन्म में भी तो मुलुक गए थे, पिछले जन्म में भी तो अपने जन्म स्थल गए थे, पिछले जन्म में भी कर्म किया था। शंकराचार्य जी अपने मां को अंत में समझाते हैं, अंत में नहीं शुरू में, जब उनको संन्यास लेने की इच्छा हुई, कहा मां को, मां मेरी संन्यास लेने की इच्छा है, आप अनुमति दे दो। मां रोने लग गई, तू एक ही बेटा है, मेरा तो और कोई आश्रय नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो पहले मर चुके हैं, अब मेरे लिए तुम ही आश्रय हो, तुम भी सन्यासी बनकर जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूंगी। अनुमति नहीं दिया, तो फिर समझाना लगे, हे मां ये किस मोह में पड़ी हो तुम? तुम अभी मुझे तुम पुत्र कह रही हो, ऐसे पुत्र तुमने कितने जन्म में कितने पुत्रों को जन्मा दिया, क्या मिला क्या मिला तुमको? कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधूर भुंजी। अभी स्वप्न देख रही हो कि मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर शादी करेगा, बहू आएगी है? क्या इससे पहले जन्म में बच्चा पैदा नहीं किया था, बेटा नहीं था? उससे पहले जन्म तुम्हारा बेटा कुंवारा ही रह गया था क्या? उस समय भी तो शादी हुई थी, बहू आई थी। कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधू रमुंजी, कोनु ते कोच ता, वे पुत्र कहां गए, वे बहुएं कहां गई, वो नाती पोते तुम्हारे कहां गए, क्या मिला तुमको? वो ढाक के दो पात। अब अभी तुम पुत्र के मुंह में फंसी हो, फिर ये कल्पना करती हो कि बेटा बड़ा होगा, कल्पना करती होगी बहू आएगी, फिर नाती होंगे पोते होंगे, कल्पना करोगी, फिर करते करते मर जाओगी, फिर क्या होगा? फिर अगला जन्म होगा, फिर बेटा होगा, फिर तुम कल्पना। अरे भाई कति नाम सुता न लालिता, कति नाम बधू रभुंजी, कोनुते कोचता कोवा वयम ये सब के सब खलु पांत संगम ही देहिना, ये तो पनघट के में इकट्ठे हुए ये सब प्यासु पानी के प्यासे लोग हैं, पनघट के जमघट हैं ये पुत्र बहु नाती पोते ये क्या है, पनघट के जमघट है ये है? जिसके अपने घड़ा भर गया तो वो घड़ा उठा के चल पड़ता है, जब तक घड़ा नहीं उठता तब तक बहन जी केम छो शू चाले छे हैं? बड़ी मीठी मीठी संवाद, आओ जो मारे घेरे आओ जो हैं? सारी बात कितनी मीठी मीठी संवाद, ऐसा लगता है कि मेरे परम हितैषी यही है, इसके अलावा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। लेकिन जहां उसका घड़ा भर गया तुरंत उसको कह गया अच्छा बहन आओ जो हैं? वो कह के नहीं उबारो, तमें उबारो मारा घड़ा भरवा दो पची साथे जाइए, बोले नहीं मारो तो मोड़ो थसे, क्या बात करते हो तुम, मने तो मोड़ो थसे, अभी अभी कितने प्रेम की बात करती थी, घड़ा भर गया तो मने तो पची मोड़ो थसे, ले जी तुरंत ही। ये संसार का संबंध क्या है, पनघट के एक घड़े भरने तक के संबंध है, जिसका घड़ा भर गया चल पड़े सब, कोई किसी का नहीं है। मां को समझाया फिर भी नहीं मानी, तब फिर नाटक करना पड़ा शंकराचार्य जी को, वो कपड़ा धोती रही वो नहाने के लिए चले गए तो एक गोही को तैयार किया और उसको पकड़ता हुआ दिखा दिया उन्होंने, वो तो शंकरा अवतार थे शिवावतार थे शंकराचार्य, तो गोही उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और रोने लगे जोर जोर से, मां बचाओ आ जा तू मुझे बचाने के लिए आ जा, ये खाए जा रहा है, कौन आता है, आएगा कोई, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवती, याज्ञवल्क गार्गी को संवाद में ये मंत्र आता है उपनिषद में, कौन किसके लिए है, सब अपने स्वार्थ में। बेटा जब मरने लगा बोला तो मां की हिम्मत नहीं हुई कि कूद पड़े हैं, नहीं हुई, तब वहीं कहा कि मां यदि तू मुझे नहीं बचाती है तो ये तो खा रहा है, तो फिर भी तू संन्यास लेने की आज्ञा दे दे, शायद संन्यास के नाम तेरे संकल्प होते ही ये मगरमच्छ छोड़ देवे हैं। तो कहते हैं नहीं मामा से काना मामा अच्छा, कहते हैं कि नहीं मामा ही नहीं है उससे अच्छा तो काना भी हो तो कोई बात नहीं है, मामा कहने के लिए तो होगा ना, नहीं मामे से काने मामा अच्छा है, इसलिए बेटा मर जाने से तो सन्यासी हो जाए वो अच्छा, मां ने ये सोचा अच्छा बेटा तेरी इच्छा वही है तो तेरी इच्छा पूरा हो, इतना कहना था तो मगरमच्छ भाग गया है, शंकराचार्य आ गए और प्रणाम किया और चल पड़े वहीं से, बस चरण स्पर्श किया चल पड़े सीधा नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में आए और गोविंद पादाचार्य के सान्निध्य में रहकर संन्यास दीक्षा लिया और ये कह दिया चलते समय मां तुम्हें जब भी हृदय से मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे याद करना मैं आ जाऊंगा। तो शंकराचार्य जी सब कुछ दिग्विजय करने के बाद केदारनाथ में पहुंचकर केदार मंदिर का जीर्णोद्धार करके जब वही साधना करके अंतिम में प्रारब्ध समाप्ति के साथ देह परित्याग करने के लिए केदार पहुंच चुके थे, उसी समय में मां का प्रारब्ध समाप्त हो गया शरीर का, मां ने स्मरण किया इस समय बेटा कहां होगा किस अवस्था में होगा, उसने कहा था अब मैं तो मरूंगी, एक बार वो आ जाता किस हालत में होगा कैसा होगा, इतना स्मरण करना था। शंकराचार्य जी को भान हुआ, मां ने स्मरण किया, केदारनाथ से सीधा केरल कालड़ी शंकराचार्य जी पहुंच गए और कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो सगुण साकार परमात्मा की बात करते हैं, दर्शन करने की इच्छा है अभी तक दर्शन हुआ नहीं बेटा, हाँ तुम करा दो तो अच्छी बात है, हमने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, हाँ भगवान का दर्शन करा देते हो भक्तों को, तो कहा कि ठीक है बेटो, भगवान शंकराचार्य जी ने मां को सगुण साकार का दर्शन करा दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि मां ये सगुण साकार के दर्शन से तुम्हारा प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि माया रूप का दर्शन है सगुण साकार, तो क्योंकि शब्द ही प्रयोग हुआ है सौ गुण गुण तो परमात्मा में रहता ही नहीं है, माया में रहता है। माया से युक्त हुआ हुआ गुणवान हुआ तो सगुण, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। निर्गुण निराकार विशुद्ध तत्व का आप चिंतन करो, उसका अपरोक्ष करो, फिर तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश करके कर्म संन्यास तो नहीं कराया मां को, ज्ञान संन्यास करा दिया उनको, मां को ऐसा बोध हुआ कि हां ब्रह्म एव सत्यम, ये बोध हुआ। इतने में मां का शरीर पूरा हो गया, शंकराचार्य चल पड़े, फिर केदारनाथ में गए, वहां शरीर पूरा किया, वहीं उनकी समाधि। अभी मंदाकिनी ने सब समाधि बगा दिया, तोड़ दिया, रिपोर्ट में ये आ रहा है। केवल मंदिर का गर्भगृह केदारेश्वर का बचा है, बाकी सब टूट गया है। अब वो निर्माण के अभियान तो चलाना ही चाहिए, पुनः चला रहे हैं। हाँ तो चेता पक्षी शिखा मणि तेज वृथा संचार मन्नीरलम नित्यम शंकर पाद पद्म युगली नीडे विहारम कुरु। हे चेता पक्षी शिखामणे, भगवान उस वेद रूपी वृक्ष में, उपनिषद रूपी शाखा में भगवान शंकर के पाद पद्म युगली रूपी नीड बना ले, घोंसला बनाकर रहना। घोंसला किसका बनाना? पक्षी तो घोंसले में रहता है, पेड़ में घोंसला बनाना है तो वेद रूपी पेड़ में, उपनिषद रूपी शाखा में भगवान शिव के चरण युगल रूपी तिनके को रखकर तो घोंसला बनाकर उसी में बैठो। तब उस पेड़ ऐसा पेड़ है कि उसमें फल भी लगेंगे, पत्ते भी लगेंगे, छाया भी होगी, सब कुछ उसी वृक्ष से प्राप्त होगा। ऐसा तुमको बड़ा आनंद आएगा, तुम इधर उधर नहीं भटकना भैया। मलबार हिल में कहीं फ्लैट मिल गया तो शिव के चरण को छोड़कर उस फ्लैट में मस्त नहीं रह देना। शिव का चरण ही तुम्हारा नीड है, नीड का अर्थ आश्रय स्थल, घोसला। मन को समझा रहे हैं शिव चरण के घोसला को छोड़कर इधर उधर मत भागो। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भैया, शायद ये श्रृंखला कल पूरा होने वाला 28 है ना, ये शिवानंद लहरी की जो श्रृंखला है 16 तारीख से शुरू हुई थी, कल से हम पूर्णाहुति का हैट्रिक करने वाले हैं। हाँ जीवन भाई, पूर्णाहुति के हैट्रिक पता चला कैसे हो गए हैट्रिक? कल शाम को शिवानंद लहरी की पूर्णाहुति, परसों सुबह गीता स्वाध्याय की पूर्णाहुति, नरसों सुबह श्रुति सार समुद्धरण की पूर्णाहुति, तीन दिन में तीन पूर्णाहुति होगी। ले तो हैट्रिक हुआ कि नहीं बोलो, पूर्णाहुति का हैट्रिक। तो ये शिवानंद लहरी का कल अंतिम दिन है, और जो भाव होगा कल करेंगे, फिर बचे हुए श्लोकों का फिर अगले साल 2014 यही जून महीना 16 तारीख से 28 तारीख तक बचे हुए श्लोकों की व्याख्या, क्योंकि पिछले बार शुरू किया था, पिछले बार 22 श्लोक तक की व्याख्या हुई थी, फिर 22 से 23 श्लोक से इस बार शुरू किया है, 100 श्लोक है इसमें, 23 श्लोक से इस बार शुरू किया था। अब कल तक कितने श्लोक होते हैं देखेंगे, और बचे हुए श्लोकों को फिर अगले बार फिर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति त्रिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ओम।